उसकी महिमा, उसका नितनेम आरती और वाणी पाठ भजन, इसका सदुपयोग है। और नहीं तो कहते इस चाम की कोई आवश्यकता नहीं, नहीं तो ये ऐसा गंदी चाम है मनमाने, ना जाने किसी व्यक्ति को ऐसा गंदा शब्द बोल दे वो रो रो कर मर जा। ये ऐसा गंदा चाम है, ना जाने किसकी चुगली खाकर उसको फांसी तरवा दे, ये ऐसा गंदा चाम है। राम नाम बिना अगर इसकी भक्ति इससे नहीं करते तो किसी की गलत गवाही देकर उसको फांसी तोड़वा दे, ना जाने किस किस के रोज में लठ बजवा दे एक मिनट। तो इससे अगर सदुपयोग है तो परमात्मा कहते हैं जीव जाता वो बलि जो रटे हरि नाम, और नहीं तो काट फेंक दियो यो मुख में बुलानी चाम। काट फेंकना मीन नो ने कोई काट डाला नहीं, बुराई त्याग दे, किसी का मन शब्द अप शब्द नहीं कह, किसी के बारे में झूठ नहीं बोला है, किसी को दुखदायी झूठ नहीं बोला है, किसी की गलत गवाही नहीं दे, चाहे कितना ही कुछ भी हो जा, ये निर्विचार कर लेना, नहीं तो ऐसी बयान माटी होगी इन गलत गवाही देने वालों की और गलत काम करने वालों की। आप देखते हो कुत्ते का जीवन, ऊपर तो दोनों पिछली टांग टूट जा और सिर में जख्म और पड़ा पड़ा रो रहा है, हमने दया दी है भगवान, इसने के जुल्म कर दिया ऐसा, और जब ये करता था जब क्यों किया, अब करके क्यों पिछतावे, और बोया पेड़ बबूल का फिर आम कहां से खावे। अब जैसे आज मांस खाते हैं, अब इनको नहीं लगता किसका पाप भोगना होगा। परमात्मा कहते हैं आदरणीय गरीबदास साहेब, जब परमेश्वर की आंखों देखा, सारा विवरण देखा, कहते हैं कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा तुमने ना देखा, वो ठिकाना भी क्यों याद कौन तुम्हारे, वहां तो एक तिल तिल का भी हिसाब होगा, जो तुम किसी का मांस खाते हो तुमने उसका बदला रो रो कर देना होगा। आप किसी की आत्मा कष्ट पहुंचाते हो अपने स्वार्थवश, उसका कुछ तो तुमने यही भोगना पड़ेगा और बाकी फिर नरक में बिरान माटी होगी। एक समय की बात है, एक भक्त और एक गुरु और शिष्य जा रहे थे, एक मछियारा मच्छी पकड़ रहा था, ऐसे जाल भरे और बाहर पिटक दे और वो तड़फ तड़फ कहे और मर जा, दूसरिया की आस लगा कर जाल डाल कर बैठ जा। गुरु शेष वहां पर उस तालाब के किनारे कुएं पर पानी पी रहे थे। शेष ने पूछा, गुरुदेव ये पापी आत्मा को क्या कष्ट मिलेगा, इसको कितना भयंकर दंड मिलेगा, ये इतना पाप कर रहा है। गुरुदेव ने कहा, बेटा समय आने पर जवाब दूंगा। चले गए। 5-6 वर्ष, 7-8 वर्ष के उपरांत एक 2-3 वर्ष का हाथी का बच्चा ऐसे उछल कूद मचा रहा था, मस्ती में दौड़ रहा था, कभी छलांग लगा रहा था, कभी पीछे को हट रहा था, वो ऐसे उछलते कूदते एक 2 वर्षों की बीच में फंस गया। बीच में फंस गया तो उसको वो झटके वटके मार के निकल तो आया, पर खाल घनी फुल गई और उसमें जख्म पड़ गया, उसमें जख्म गहरा हो गया और कीड़े पड़ गए। वो पड़ा पड़ा वहीं पर चिल्ला रहा है और उसमें बेअंत कीड़े वो खा रहे हैं। उसी के आसपास रास्ते से वही दोनों गुरु शिष्य जा रहे थे। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इस प्राणी ने ऐसा क्या जुल्म कर दिया, प्रभु कितना बुरा हाल इसका हो रहा है, ये इतने कीड़े इसको खा रही। तब शिष्य गुरुदेव ने बताया, बेटा ये वही मछियारा है जो वो मछलियों को पकड़ पकड़ के बाहर डाल रहा था, उनके मांस को खा रहा था, खाया करता था। अब ये जितनी मछलियां इसने सारे जीवन में मारी खाई वो आज अपना टिट फॉर टेट कर रही है, अब ये वही इनका बदला दे रहा है। अभी तो ये आंशिक है और भी बहुत ऐसे ऐसे पाप इसको और भी भोगने पड़ेंगे। तो यहां परमात्मा कहते हैं, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। अब हम आप देखिए अपने पूर्वज हिंदू, पवित्र हिंदू समाज मुसलमान समाज को इसलिए बुरा बताया करता था कि वो मांस खाते थे, बाकी तो सब एक जैसे ही थे, वो मांस खाते थे। और अब हिंदू देखो मांस कितना खा रहे हैं, मुसलमानों को भी पीछे छोड़ने को रहे हैं। और फिर ये भोगना पड़ेगा, जब रोना आएगा। अब ये बात सत्संग के अंदर ही आपको याद दिलाई जाती है, इन पे अमल कीजिए, प्रभु की वाणी है, दास की नहीं है। परमात्मा का वाणी जो है उनका संविधान है, और संविधान की अवहेलना करना पाप का भाग, पाप का भागी हो कि आपको सजा भोगनी ही पड़ेगी। अब बैल की जब याद आती है ये मन फिर ठीक हो जाता है, क्योंकि ये जो अंकुश है इस मन पापी पर जो बकवाद करने लगे, तो ये बातें याद आ जानी चाहिए प्रभु की वाणी की, ये फिर सीधा हो जाता है। दास का जन्म जो एक किसान परिवार में हुआ, और हमारे एक बैल था उसके पैर में कील चल गई लगभग 1.5 इंच लंबी। अब वो बातें अब याद आ रही हैं जब ये विशेष सत भक्ति पर लगे, जब घनी याद आने लगी। पहले तो ओम जय जगदीश रे, स्वामी जय जगदीश रे घंटा घंटा सुबह शाम करते ही रहते थे, लेकिन मन में वो डर नहीं था प्रभु का जो अब बन गया। अब क्योंकि हम मर्यादा से चल पड़े और पथ रह करके हम ये सब काम कर रहे हैं, प्रभु का हमारे ऊपर विशेष आशीर्वाद है गुरुदेव का, जिस कारण से भक्ति भी ठीक चल रही है, याद भी बनी रहती है, पाप कर्मों से छूटने का प्रयत्न भी जारी रहता है, और वो जो दुख जो ज्ञान दिया जाता है वो हृदय में पहुंच रहा है। पहले हृदय में नहीं जाता था, आक्षणिक सुनते थे फिर भूल भाल जाते थे। तो उस बैल के जो कील तो लगी, आली ने सोचा कि वैसे कोई ऊंचे नीचे पैर रखने से इसकी नस में नस चढ़ गई है, और वो कई बार ऐसे चलाते चलाते रहते तो वो ठीक हो जाता, और छोड़ देते तो ज्यादा दुख हो जाता था। इस दृष्टिकोण से आली ने बिना उसको परवाह नहीं की और सारा दिन काम लेता रहा। श्याम के समय बिल्कुल 3 पैरों से आया बैल और बैठ गया तीना चारा तिरा। सुबह तक पैर सूज गया गो घुटनों तक। एक ऐसे पहले 30-35 साल पहले ऐसे ही ट्रीटमेंट होया करते गांव में, तो उसमें एक पड़ोसी बुलाया जो थोड़ा बहुत टूटे फूटों की जानता था ऐसे। उसने आप कहा कि इसके घुटने पर बाव आ गया है, कोई नस पर नस चढ़ रही है या बाव आ गया है, इसकी एक पट्टी बांध दी, कील लगी है खुरों में नीचे पैरों में और पट्टी बांधी जा रही है घुटने पर, 1 महीने तक बांधते रहे। वो बैल ने उठा वहां से, खाना चारा भी छोड़ दिया, आंखों से पानी गिराए, बैठे बैठे को पानी पिलाए, वहीं थोड़ा सा चारा रख दे, थोड़ा बहुत खाए, फिर बहुत बुरी तरह स्थिति में रहे। 1 महीने के बाद लगभग उसका अपने आप ही वो पैर में पक के वो कील जहां लगी थी फूटा, उसमें से मवाद निकला। जब घर वालों को पता लग गया, अरे सचमुच इसके तो पैर में भी खुर में भी कोई गड़बड़ है, वो खुर में दिखाया गड़बड़, तो पड़ोसी बुलाया, उसने एक चमटी सी तो वो पकड़ के कील निकाल दी, इतनी लंबी कील। तीसरे चौथे दिन बैल अपने आप खड़ा होने लग गया और ठीक हो गया। हे भगवान, अब देखो उस पहले जब वो नादान आत्मा मनुष्य शरीर में था, उसने मन में बिना सोची होगी ये पहाड़ टूट जाएगा, ये ऐसा भयंकर कष्ट तुझे भोगना पड़ेगा, तू बैल भी बन जाएगा और बोल के बता नहीं सकेगा तेरे कष्ट कहाँ है, आंखों से पानी गिर रहा है, ये बोल के नहीं बता पा रहा तेरे पैर में कहाँ कील लगी है, घुटनों पर पट्टी बन रही है, मरहम पट्टी ट्रीटमेंट घुटने का हो रहा है और खुर में वो दर्द सता रहा है। अब ये बातें वो परमात्मा याद दिलाता है कि फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजे बैल बना, और 4 पहर जंगल में घूमे तेरा तो नहीं पेट भरे। आप तो समय पर भोजन खा रहे हैं, समय पर आहार जो चाहे वो हम पर उपलब्ध कर लेते हैं, और फिर सुबह से लेकर शाम तक प्यास लगी रहे से भूख लगी रहे, 1 बार चारा मिलेगा, मच्छर लड़ते हैं, पूछड़ ला दी, एक दूम लगा दी, इसे इस दूम से अपना मच्छर उड़ा चे पंखे की स्थान पर लगा। अब जैसे हमें मच्छर काटते हैं पंखा चला ले, गर्मी लगे पंखा चलाए, मच्छरों के लिए आजकल वो ऑल आउट भी बना लिया, और उस फिर पशु बनने के बाद ये एक ही दूम होगी, इसको चाहे कूलर के स्थान पर प्रयोग करना और चाहे पंखे पर, और वो भी कर्महीनता के कारण वो भी कट जाती है किसी ना किसी कारणों से, और वो फिर सारी 10 इंच की रह जाती है, वो ऐसे बैठा बैठा ऐसे करता है। अब ना वो पंखा की काम, वो जैसा दूम का कार्य था वो भी गया उससे,
अब जितना भी अंग भंग क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे पाप जितने अधिक होंगे वो भी पशु किसी भी जोनी में अंधा होगा, टांग टूट जाएगी, कोई कोड लगेगा, दोम कटगी, सींग टूट गए, ये सब पिछले ही संस्कारों के पापों कर्मों के दबाव से ही सब हुआ करता है। और फिर परमात्मा क्या याद दिलाते हैं, फिर पीछे तू खर की जाएगा, खर माने गदा, फिर पीछे तू खर की जाएगा, कुरुड़ी चरने जा और टूटी कमर पजा हुआ चढ़ तेरा कागा मार चला, फिर गधा बनेगा। परमात्मा कह रहे हैं कि फिर तू गधा बनेगा और फिर कुम्हार सारा दिन काम लेगा, एक जख्म जरा सा हो जाए तो आपका अगर कपड़ा भी लग जाए जख्म के ऊपर, आंखों से पानी नहीं समाप्त होता, रे से बहुत पीड़ा होती है। और गधा बनने के बाद कमर टूट जाती है, जख्म बन जाता है, उसके ऊपर बोरा रखा जाता है, उसके ऊपर एक थैला रखा जाता है जिसमें ईंटें कच्ची पक्की ईंटें डाली जाती है, कभी ऊपर से नीचे, नीचे से फिर भर के ऊपर पजावे पर जैसे मदानी भट्टा लगाते थे। अब वो आंखों से पानी गिर रहा है और जख्म के ऊपर एक क्विंटल वजन रखा है। अब ये कष्ट क्यों उठाने पड़ रहे हैं अपन को, हम परमात्मा की वाणी पर विश्वास नहीं करते। जब मनुष्य शरीर होता है तब हम यहां से इतना जोर नहीं देते दिमाग पर जितना संत चाहते हैं कि ये अपना कार्य भी करे, लेकिन परमात्मा की मर्यादा में रहते हुए भगवान के मार्ग को सबसे ज्यादा महत्व दें, प्रभु की भक्ति को ज्यादा महत्व दो। एक नंबर पर हमने परमात्मा के मार्ग को लाना चाहिए, एक नंबर पर, और उसके एक नंबर पर लाने से फिर अपना जो अन्य जो कार्य है वो भी ठीक ठाक बहुत अच्छी तरह, घर में सुविधा, बच्चों की सुरक्षा को कष्ट निवारण, कोई व्यवसाय में हानि, वो सब ठीक हो जाती है। अब इन सत्संग को सुनकर आदरणीय गरीबदास साहेब ने कहा, प्रभु भक्ति तो हम करते हैं, भक्ति तो हम करते हैं। परमात्मा ने कहा, बेटा काहे की भक्ति करते हो, श्री कृष्ण, श्री राम, ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसा भी हनुमान जी आदि की। परमेश्वर ने कहा, बेटा ये भक्ति करते करते तुमने युग बीत गए, असंख्य युग। क्या बताया कि कोट जन्म तन बर्मत हो गए, कुछ ना हाथ लग्यारे, कुकर सुकर खर बोरे तो कौवा हंस बुगारे, कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी ना मन की आशा, भिक्षक होकर दर दर घूमा तुम मिला नो निर्गुणासा। तो सब कथा सुनाई कि ये जो साधना तुम करते हो जन्म और मृत्यु के मिटने की नहीं है, ब्रह्म पर ब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश व अन्य साधनाओं से जीव का जन्म और मृत्यु और कर्म का दंड कभी समाप्त नहीं हो सकता, जैसा किया ज्यों का तो भोगना ही पड़ता है। फिर परमात्मा ने बताया कि वो पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष, उसकी भक्ति करने से जीव का जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाता है और कर्म का दंड भी जो भोगे होता है वो भी नहीं भोगना पड़ता। संत शरण में आने से आई टले बुला, जय मस्तक में सूढ़ी हो वा काटे मटल। पूरा सत्संग सुनकर आदरणीय गरीबदास साहेब में एक विशेष प्रेरणा हुई कि प्रभु वो सतलोक हमने तो कभी सुना नहीं, ना कोई ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग कोई भगवान सुना, ये परमात्मा कैसे विश्वास हो आपके दास पे, दास को। परमेश्वर ने कहा, ठीक है पुत्र, आज तुझे मैं अपना वो लोक दिखाता हूं जहां से तुम आए थे। बेटा परमात्मा ने सारी कथा सुनाई कि तुम पहले मेरे वहां रहा करते थे सतलोक में, तुमने जरा सी नादानी की थी जिसके कारण इस काल ज्योत निरंजन के वश होकर तुम यहां फंस गए और इसने तुम्हारे यहां मुर्गे बना दिए, कोई गधा बनाया, कोई गधी बनाई, कोई सूर बनाया, कोई कुत्ता बना रखा, किसी का बेटा मरा, किसी की बेटी मरी, किसी की टांग कट गई, किसी का अंधा हो गया, और कोई ठीक ठाक हो जिसका भागी है, फिर दूसरे जन्म में उसकी बहुत बड़ी दुर्गति। परमेश्वर की सारी कथा सुनकर आदरणीय गरीबदास साहब ने परम पूज्य परमेश्वर कबीर साहब से कहा, हे भगवान एक मेहर करो अपने दास पे, मुझे दिखा दो आपका लोक, हम कहां थे। वो तो मालिक आए थे अपनी छाप छोड़ने के लिए, अपना एक गवाह तैयार करने के लिए इस कलियुग के लिए। उसी समय उस परमात्मा की प्यारी आत्मा परमेश्वर ने आदरणीय गरीबदास साहब की आत्मा को उनके शरीर से निकाल दिया और शरीर वहीं छोड़ दिया, उस सूक्ष्म शरीर युक्त आत्मा को सतलोक लेकर गई, ब्रह्मा विष्णु महेश के सब स्थान दिखाए,
वो लोक दिखाए, धर्मराज का लोक दिखाया, स्वर्ग लोक दिखाया, काल का लोक दिखाया, वो नरक दिखाया जहां पर प्राणी अपना कर्म दंड भोग रहे हैं, जहां उन लाल खंभों से बांधे जा रहे हैं, जहां पर उन नरकों के अंदर उनको ठोका जा रहा है और बाकियों की तैयारी हो रही है, जहां वो काल बैठकर 1,00,000 प्राणियों का नित आहार कर रहा है, वो खा रहा है। फिर सतलोक लेकर गए परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा को। उधर पीछे से क्या हुआ, काफी समय ऐसे ही वो आदि गरीबदास साहेब जी का शरीर जैसे आसन पदम लगा के आम सिद्ध आसन पर आदमी बैठा रहता है, पलाथी मार के आलती पालथी लाके ऐसे बैठा है। उधर से ग्वालों ने, दूसरे पालियों ने सोचा भी वो बाबा जी भी चले गए, और देखो वो लड़की का लड़का अभी वहीं बैठा है, उसको बुला लाओ, अपने गांव को गायों को घेरेगा, उसका नंबर आ गया। अब वहां एक भक्त जाके कहने लगा, गरीबू गरीबदास परमेश्वर को की प्यारी आत्मा को गरीबू कहा करते थे गांव में, गरीबू। पहले तो 12 वर्ष के बाद लड़का हुआ तो गांवों में कहा करते हैं भाई बढ़िया नाम ना रखियो, कदे मर ना जावे, इसलिए गरीब नाम दे दिया, गरीबू गरीबू कहने लगे। तो गरीबू आवाज लगाई, गरीबू खड़ा हो भाई, आजा तेरा नंबर आ गया, गाय घेर के ला। गरीबू खड़ा हो, अब नहीं उठा तो पकड़ के कहने लगे, भगत जी खड़ा हो, अब तू साधु बन गया क्या, साधु के पास बैठ के ऐसे छेड़ा था और वो शरीर लुढ़क गया पीछे ने, उसमें प्राणी प्राणी नहीं था, आत्मा नहीं थी। अब वो लड़का का लड़के का शव ऐसे शव गिर गया तो उसको देखा है तो मर गया, मर गया। सब पाली दौड़े आए, उन्हें कहा भी सचमुच ये तो मर गया, हमने कहा था, लगता तो तभी था कि इसने वो जादू जंत्र का दूध पी लिया, मरना तो था ही भाई। दो पालियों से कहा कि जाओ भागे जाओ गांव में पता दो कि ऐसे ऐसे कहानी बन गई। उन्होंने गांव में जाकर उनके मात पिता को बताया, मात पिता ने सुनते ही पुत्र की मृत्यु, दोनों बेहोश हो गए। इकलौता पुत्र, 12 वर्ष तक कोई संतान नहीं, फिर उसके बाद कोई संतान नहीं। अकेलौता पुत्र की मृत्यु सुनकर मात पिता दोनों बेहोश हो गए। गांव वाले व्यक्ति दौड़े भाग दौड़े दौड़े वहां पहुंचे जहां घटना स्थल थी, सचमुच बच्चे को मृत पाया, वहां से उसका वो उठा के उस बच्चे के शव को गांव की तरफ चल पड़े। मात पिता फिर होश में आए तो रो रो बुरा हाल कर लिया। उधर से परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा को सतलोक ले गए। वहां जाकर क्या देखा कि एक और रूप में परमेश्वर तेजो में रूप में विराजमान है, एक तख्त के ऊपर। नीचे से जिंदा रूप में गए हुए परमात्मा कबीर परमेश्वर रस्ते में अपनी सारी कथा सुनाते हुए जा रहे हैं कि बेटा मैं पहले काशी में भी गया था, 120 वर्ष रह कर आया था, उसमें मैंने ऐसे ऐसे लीलाएं की थी, सिकंदर लोधी का जलन का रोग ठीक किया था, रामानंद का शीश सिकंदर लोधी ने काट दिया था, उसको जीवित किया था, कमाल कमाली मरे हुए जीवित किए थे, सारी कथा सुनाई अपने आत्म उस एक जीवन की सब लीलाएं सुनाई। मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, मैं ही सत्पुरुष हूं, सारी सृष्टि का रचनहार हूं। अब रस्ते में जब जिंदा रूप में जा रहे थे विश्वास हो रहा था, लेकिन आगे जाकर देखा कि परमात्मा तो वो बैठा तख्त के ऊपर, कितना सुंदर शरीर, तेजो में शरीर है, जिसके एक रोम को से करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतनी रोशनी निकल रही है, ये है भगवान, ये नीचे तो बाबा जी कोई इसका यहाँ का सेवक होगा। ऐसा गरीबदास जी महाराज की आत्मा विचार विमर्श कर रही है मन मन में अपनी आत्मा में। वहां जाकर क्या किया कि नीचे से जो जिंदा रूप में गए थे प्रभु चवर करने लग गए अपने ही दूसरे स्वरूप, जो तेजो में स्वरूप में वहां विराजमान थे। कुछ देर के बाद क्या होता है कि गरीबदास जी सोच ही रहे हैं कि ये है पूर्ण परमात्मा, ये कोई नौकर है। इतने में वो तेजो में शरीर खड़ा होता है उस सिंहासन से, और नीचे से गए परमात्मा उस पर विराजमान हो जाते हैं एक साधु रूप में, जो जिंदा महात्मा के रूप में गए थे, और तेजो में शरीर वाला जो वास्तविक प्रभु नजर आता है वो उसके ऊपर चवर करता है अपने दूसरे स्वरूप जो नीचे से गया था उसके ऊपर। गरीबदास जी सोच रहे हैं कि बाबा जी में भगवान चवर कर रहा है, ये बाबा जी भी खूब शक्ति वाला नजर आता है। इतने में वो तेजो में शरीर उस परमेश्वर नीचे से आए हुए परमेश्वर के स्वरूप में समा गया। अकेला वो परमेश्वर उसी जिंदा वाले रूप में विराजमान है तख्त के ऊपर सिंहासन पर, और चवर अपने आप सेवा कर रहा है ऑटोमेटिक। तब परमेश्वर ने कहा, बेटा हम ही अलख अल्लाह है, कुतुब गोस और पीरे, गरीब दास खालक धनी ही हमारा नाम कबीर। हम ही सारी सृष्टि के रचनहार हैं, और हम मैं ही पूर्ण ब्रह्म हूं, सारी सृष्टि का रचनहार मैं हूं, और तुम मेरी आत्मा हो, वहां अपने ही कर्म कमजोर संस्कार से तुम गलती से वहां फंस गए हो बेटा, और तुम्हें यहां आकर चैन मिलेगी। देखो ये तुम्हारे पहले के यहां से नहीं गए वो कितने आनंद से रह रहे, इनकी कभी मृत्यु नहीं होती। मनुष्य जैसा शरीर है और 16 सूर्य जितना तेज इस वहां के शरीर का है, 16 सूर्य जितना इतना नूर है। तब गरीबदास साहब कहते हैं भगवान मुझे यहीं रख लो, मत भेजो उस गंदे लोक में। परमात्मा ने कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं रख सकते, स्वयं भी भक्ति करो और भक्ति का ऋण उस काल का ऋण तुम्हारे ऊपर है। इस भक्ति की साधना से सत भक्ति करके ये नाम तुझे दूंगा, रह रहकर पुत्र तुझे संभालता रहूंगा, गुप्त रूप से आया करूंगा तेरे पास, और ये भक्ति कर स्वयं भी कर और जो भी तेरे संपर्क मा उनको सतमार्ग बता और फिर तुझे भक्ति करवा के यहां ले आऊंगा। अब उधर परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा को अपना ऊपर का दृश्य दिखा रहे हैं। उधर से गांव वालों ने बच्चे को मृत जानकर शमशान घाट पर रख दिया, यानी चिता पर रख दिया, जलाने की फूकने की तैयारी कर दी। इतने में परमेश्वर ने वो आत्मा वापस छोड़ दी, तक चिता के ऊपर रखा हुआ शरीर ऐसे अपने आप कंपन करने लगा। 10 वर्ष के बाल गरीबदास जी का ऊपर बांध रखे थे वो बंधन टूट गए, अपने आप खड़ा होकर और आवाज लगाई, बोलो सतगुरुदेव की जय। ये अमृत वाणी बोलने लगे कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। अब गांव वालों ने सोचा भी चलो लड़की का लड़का जीवित तो हो गया पर ये तो पागल हो गया, ये वाणी बोल रहा था अमर वाणी, हम ही अलखला हैं कुतुब गोस और पीर। ये अमर वाणी परमात्मा की महिमा की सुना रहे थे कि 16 संख पर हमरा तक या गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाब भी हम चल आए काटन काल का फंदा। अनंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति निभार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। अब ये वाणी बोलने लगे तो गांव वाले का समझ मावनी, कहने लगे भाई छोरा तो पागल हो गया, ये लड़का तो पागल हो गया और परमात्मा का नाम बावड़िया धर दिया। बावड़िया उस परमेश्वर की प्यारी आत्मा गरीबदास साहेब का यानी उर्फ नाम गरीबू तो था, गरीबू के साथ साथ बावड़िया कर दिया के बावड़िया, यो गरीबू बावड़िया आ गया, बावड़ा बावड़ा कहते ना बावड़िया कहने लगे। अब 3 वर्ष के बाद जब वो गरीबदास साहब 13 वर्ष के हो गए, 3 वर्ष के बाद एक दादू पंथी महात्मा गोपाल दास नाम के, उनका बनिया के घर का शरीर था, वो भी ऐसे प्रेरणा पाकर के प्रभु की गृह त्याग कर और साधु रूप धारण करके और अपनी साधना करते हुए गांव गांव में घूमया करते थे, गांव गांव में भ्रमण भी करते थे। अब वो गोपाल दादू साहब को भी परमात्मा ऐसे ही मिले थे कबीर परमेश्वर, जब दादू साहब 7 वर्ष के थे उनको भी ऐसे मिले थे, और फिर वो सत्ज्ञान दिया, अपना करमंडल से जल एक पान के पत्ते पर रखकर पिलाया, फिर सतलोक ले गए। 3 दिन और 3 रात तक बेहोश पड़े रहे, उनका शरीर नहीं छूटा, लेकिन ऐसे शरीर बेहोश पड़े रहे, श्वास आते रहे आत्मा नहीं रही। 3rd दिन वो आत्मा फिर छोड़ दी थी दादू साहब के शरीर में। उसके बाद दादू साहब ने कबीर परमात्मा की कलम तोड़ महिमा गाई, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सृजनहारे, कोई सरगुण मेरी रहावे कोई नरगुण ठहरावे, दादू गत कबीर की हमसे कही ना जावे, केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये सुनकर भाग गाज, और नदी सब कूप है ये केते श्रीता नीरे, दादू उगम अपार है दरिया सत्य कबीर। और भी भगवान हैं जो उनके अवतार संत जन आते हैं वो भी शक्ति रखते हैं, लेकिन कबीर परमेश्वर के तुल्य नहीं। जैसे भगवान श्री विष्णु के अवतार भगवान श्री विष्णु के उपासक संत, उनमें भी शक्तियां होती हैं। वो काम चलाओ जैसे और संत सब कूप एक कुएं जितना काम करेंगे, और कुछ एक ऐसे भी संत हैं जो ब्रह्म उपासक हैं, वो सरिता नीर सीजनल जो रिवर सीजनल जो कैनाल होती हैं, यानी समय पर चलना फिर बंद हो जा वर्षा ना होता है, कतीश ऐसे भी हैं। लेकिन दादो दरिया अगम है ये दरिया सत कबीर, और कबीर परमात्मा को तो दरिया समझो जिसका पानी कभी भी समाप्त ना हो, कभी भी समाप्त ना हो, चाहे 2 साल वर्षा ना हो, फिर भी उस दरिया का पानी बेशक कम बेशक हो जा पर समाप्त नहीं होता। ऐसे ही कहते हैं और संत सब कूपे हैं ये कहते श्री तानी रे दादू अगम अपारे है वो दरिया सत्य कबीर, यानी पूर्ण ब्रह्म की शक्ति का कोई वार पार नहीं है, बाकी सीमित शक्ति युक्त भगवान है ब्रह्म और ब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश आदि। अब वो दादू पंथी महात्मा गोपाल दास प्रभु को मानने वाला था और दादू साहब की वाणी से भी परिचित था, लेकिन उस गोपाल दास को भी ये मालूम नहीं था कि कबीर परमात्मा ही आकर के दादू जी को मिला था। वो बूढ़ा बाबा कहा करते थे, बूढ़ा बाबा मिला था। अब दादू साहब ने, क्योंकि जब 7 साल की उम्र में आया, जब वो होश में आए 3 दिन के बाद, तो कहने लगे मुझे बूढ़ा बाबा मिला था, बूढ़ा बाबा मिला था, बूढ़ा बाबा मिला। उसके बाद फिर उन्होंने नहीं मिले तो दादू जी ने उस सांभर नदी में डूबने के लिए और ऐसे भैया तो प्रभु दर्शन दे दो, रहा नहीं जाता, अपनी आत्महत्या करने के लिए टक्कर मारी थी, हाथों पर ले लिया था परमेश्वर कबीर साहब ना के। और फिर दादू साहब ने कहा था ये कबीर परमेश्वर है जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सृजनहार। तो ये सारी कहानी न्यू बिगड़ी पड़ी है कि जो पहले की वाणी है दादू साहब की, वो तो बूढ़ा बाबा कह के गुण गाए थे, और जब आंख फिर दोबारा परमात्मा प्रकट हुए, उनको पूर्ण ज्ञान समझाया, तब कहा ये तो कबीर परमात्मा थे जो काशी में आए थे। अब क्या हुआ कि गांव में ये चर्चा हुई कि बहुत अच्छे महात्मा आए हैं। गरीबदास साहब जी के नाना जी के पास 2-4 व्यक्ति गए कि चौधरी साहब आपका देवता ठीक हो जाएगा, एक बहुत बड़े महात्मा है उसको दिखा लो। संतों की विद्या संत ही जानते हैं, क्योंकि उनको शंका हो गई थी कि वो बाबा जी का जंतर मंत्र का दूध पी लिया ना, इस करके बावला हो गया, पागल हो गया। तो उस लड़के को लेकर 2-4 बड़े बुजुर्ग से व्यक्ति उस संत के पास पहुंचे, गोपाल दास जी के पास, उनसे प्रार्थना की कि महात्मा जी ऐसे ऐसे हमारा ये इस गांव के बहुत बड़े जमींदार का पुत्र है और इसका दोता है, लड़की का लड़का, इसका संतान भी नहीं थी, और फिर लड़की मतलब पुत्र नहीं थे, लड़की को यहाँ अपने घर रखा है, उसके एक पुत्र दिया भगवान ने, ये मर गया था, वो तो शुक्र है जीवित हो गया, मालिक की मेहर हुई, लेकिन ये पागल हो गया, ना जाने उस संत ने इसको कौन से जंतर मंत्र का दूध पिला दिया, ये याददाश्त भूल गया, ना जाने क्या क्या बोल रहा है। 3 वर्ष हो गए, सारा ट्रीटमेंट करा लिया, इलाज करा लिया। गोपाल दास जी ने कहा बैठ जा बेटा, आदरणीय गरीबदास साहब को अपने पास बैठा लिया, कहा बोल कौन था वो जिसने तुझे दूध पिला दिया, कौन था वो। तब परमेश्वर ने क्या कहा, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माए कबीर हुआ। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जाति जुलाहा वो भेद नहीं पाया भाई कासे माए कबीर हुआ। ओए होए, अब दादू साहब का नाम आया तो उसका अनुयायी को तो एकदम खटका सा लगता है। क्या बताया परमेश्वर ने कि जो मेरी मुक्ति की, हम सुल्तानी यानी हम सभी ग्रुप रूप में, मैं अब्राहिम अजम सुल्तान और श्री नानक साहेब और श्री दादू जी और मैं, हम सभी को पार किया और ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म काशी में जुलाहा कबीर नाम से रह के गया, इसका कोई भेद समझ नहीं पाया। दादू को सतगुर मिले वो दीपान की पीख, बूढ़ा बाबा जिसे कहो वो दादू की नहीं सीख। कि वो वास्तविक ज्ञान नहीं था उसमें, दादू जी को जो जिसे तुम बूढ़ा बाबा कह रहे हो, दादू को सतगुरु मिले, वही कबीर परमात्मा आकर मिले थे, जो मुझे मिले दादू साहब को, और उनको एक पान की पीख दी, पेय पदार्थ, पान, पान के पत्ते पर अपने करमंडल से एक जल रखा था, जैसे हम आपको अमृत देते हैं उपदेश के समय। तो कहते हैं दादू को भी वो सतगुरु मिले दी पान की पीख, और बुढ़ा बाबा जिसे कहो ये दादू की नहीं सीख। दादू की वास्तविक ज्ञान नहीं है, वो तो पहले अनजानपन है, उन्होंने बूढ़ा बाबा कहा था जब वो सही विलेज बताया था हम सुलता वो, कि जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सज्जन। अब वो 65 साल की उम्र का गोपाल दास महापुरुष बाबा जी संत जी, वो कहने लगे गांव वालों ये बावला नहीं भाई, बावले तो तुम हो, ये तो अमृतवाणी बोल रहा है। तब कबीर परमात्मा के आगे, यानी वो आदमी गरीबदास साहिब जी के सामने, 13 वर्ष के बच्चे के सामने, और वो 63 वर्ष का बूढ़ा महात्मा बुजुर्ग हाथ जोड़कर कहता है हे महापुरुष, हे भगवान, ये अमृतवाणी लिखवा दो, ये तो बहुत काम की चीज है, क्योंकि जिसने ज्ञान हो जाता है वो वही इसकी परख करता है, अपनी अनमोल वाणी की जौहरी जो है ना लाल की परख करता है। गरीबदास साहेब उठकर चल पड़े, वो 65-63 साल की उम्र का बुजुर्ग हाथ जोड़कर कहता महात्मा जी ये अमर वाणी लिखा दो, ये अमर वाणी लिखा दो, कलयुग में उद्धार करेगी तो जीवों का। अब गांव वालों ने सोचा भी लड़का तो पागल था, ये बुजुर्ग ये बाबा जी और पागल हो गया, इसके पीछे पीछे वाली हाथ जोड़ के यो गया काम थे। तो तीसरे दिन गरीबदास साहेब ने कहा देखो गोपाल दास, अगर पूरी दिखो तो मैं लिखवाऊं, बीच में छोड़ के मत जाना। गोपाल दास ने कहा कि नहीं छोड़ के जाऊंगा प्रभु, चाहे कितना समय लगा दो। तो कहते हैं गरीबदास साहेब जी का एक बेरी का बाग था, बड़बेरी का, बेरी का, और उसमें एक जंडी का पेड़ था। उस जाटी के पेड़ के नीचे बैठ कर गोपाल दास लिखा करते थे, परमात्मा बोला करते थे। गरीबदास साहब ने कहा कि ये मैं जो तुझे वाणी लिखा रहा हूं ना, अब जिस सती थी मैं अब बोलता बोलता आया हूं, ये जो ऊपर की मैं वाणी लिखा रहा हूं, ये 80 अरब कोस, 80 अरब कोस समाधि मार्ग से बातें कह रहा हूं, ये बातें यहां की नहीं है, ये सहज समाधि होती है। सहज समाधि, सहज समाधि में यहां भी देख रहा होता है और बोल भी रहा है, और दृष्टि वहां से कैच करके रिसीव करके वो ज्ञान को आगे उच्चारण कर रही होती है। कहते हैं ये जो मैं वाणी लिखा रहा हूं ये यहां की नहीं है, 80 अरब कोस, एक कोस लगभग 3 किलोमीटर का होता है, और 80 अरब कोस कहते इतनी दूरी से वो वहां की उस अतिथि के जो वहां के जो हंस हैं वहां कैसी रहनी सहनी है, वहां तक पहुंचे हुओं का कि क्या उपलब्धि होती है, वो बोल रहा हूं यहाँ की नहीं है। ऐसे 6 महीने के अंदर वो लेखन कार्य समाप्त हुआ। आज वही अमरवाणी सदग्रंथ रूप में आपके सामने अखंड पाठ चल रहा है, और दास भी उसी के आधार पर आपको सत्ज्ञान दे रहा है, क्योंकि ये विश्वास इसलिए दृढ़ हुआ कि उस परम पिता ने के जो वाणी थी वो लिपिबद्ध की गई थी एट ए टाइम, और फिर उसमें से 90% कबीर वाणी से मेल खाती है, और फिर उन परमात्मा उन प्यारी आत्माओं को जिनको कबीर परमेश्वर जाकर मिले हैं, उनके बाद उन्होंने जो अपनी अमर वाणी बोली है वो ज्यों की त्यों इन महापुरुषों से मेल खाती है। इन सब मेल के मिलने के उपरांत दास को दृढ़ विश्वास हुआ कि सचमुच ये कबीर परमेश्वर है, और ये उनके गवाह है उस परमेश्वर के, आदरणीय गरीबदास साहेब और ये अन्य महापुरुष, आदरणीय दादू साहेब, आदरणीय श्री नानक साहेब जी, आदरणीय मुलुकदास साहेब जी, आदरणीय धर्मदास साहेब जी। अब ये 4-5 तो ऐसे पक्के एफिडेविट है उनके, और साथ में फिर अब ये चारों वेद गवाह नौके निगुण गांव कबीर परमात्मा की। कबीर परमेश्वर ने कहा था वेद हमारा भेद है, हम वेदों में ना, और जिस वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते ना, जिस वेद से मैं मिलूं वेद मेरा ही भेद दे रहे हैं, पर मैं वेदों से नहीं मिल सकता, इनमें मेरी महिमा जरूर है पर मुझे पाने की विधि वेद चारों वेदों में नहीं है, और जिस वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते ना, जिस ज्ञान से जिस विधि से मेरी प्राप्ति हो वो वेद नहीं जानते। वो तो चारों वेद भी यही कहते हैं, वो तत्वदर्शी संत कोई और है, पवित्र गीता जी यही कहती है कि वो तत्वदर्शी संत कोई और आएगा और वही हमारे को सत्ज्ञान देगा, तब हमारा उद्धार होगा। अब ये जो 3 दिवसीय समागम मनाया जा रहा है ये उसी उपलक्ष्य में है कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म मनोसदृश है, साकार है, और जब चाहे एक पल में इस पृथ्वी पर पलक की कुछ ही सेकंड में सतलोक में। गरीबदास जी कहते हैं, एक पलक में साहेब मेरा करता 14 भवना, वो एक पलक में इन 14 भवन की खबर लेकर और अपने यथा स्थान पर बैठ जाता है। इतना समर्थ, इतना गतिशील परमेश्वर है। अब गरीबदास साहेब अपनी अमर वाणी में क्या बताते हैं, हम देखा सो साच है वही और सकल परपंचे, हमने देखा वो सत्य, बाकी सब परपंच है। अपनी अपनी दंत कथा कह रहे हैं जो परमेश्वर से पूर्ण परिचित संत या ऋषि नहीं है। गरीबदास साहब ने बताया कि कबीर परमात्मा मुझे धर्मराज के दरबार में लेकर गई। धर्मराज जहां पर हमारा सबका एक लेखा जोखा होता है, जहां पर हमें पाप और पुण्य के आधार पर हमारा जो प्रारंभ बनता है, जो यहाँ का चीफ जस्टिस है, उसको धर्मराय या धर्मराज कहते हैं। वो धर्मराज ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने भी अपने चेयर नहीं छोड़ता है, अपनी कुर्सी से उठता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश का भी अकाउंट उसके आधार पर वही तैयार करता है। कर्म जैसा भी जिसका खाता है उसके अनुसार वही तैयार करता है। और जो ही कबीर परमेश्वर गरीबदास साहेब के साथ वहां आत्मा को लेकर के पहुंचे अपनी समर्थता का प्रतीक देने के लिए कि इस बालक का पक्का जच जा, पक पूर्ण दृढ़ निश्चय हो जाए और नगर नगर में गांव गांव में ये मेरे निर्भय होकर के और निसंशय होकर के गुणगान करे, इसलिए वो अपनी समर्थता का एक और प्रमाण देना चाहा प्रभु ने। धर्मराज के दरबार में जब कबीर परमात्मा पहुंचे, धर्मराज ने आसन त्याग दिया और करबद्ध होकर के खड़े हो गए और कहा कि आओ प्रभु बैठो, विराजमान हो। जैसे उच्च अधिकारी और नीचे के अधिकारी के ऑफिस में चला जाता है तो उच्च अधिकारी के जाते ही वो नीचे वाला अधिकारी अपना चेयर छोड़ के एक आदर के सत्कार भाव से औपचारिकता शिष्टाचार के नाते खड़ा हो जाता है और कहता है बैठो साहब यहाँ विराजमान हो, और वो अधिकारी खड़ा रह करके उसकी औपचारिकता का विशेष ध्यान ना देते हुए क्या कहता है, अपना जो कार्य आदेश होता है एमरजेंसी का वो तुरंत उसको कहता है और कहता है ध्यान से सुन ले कहीं फिर गड़बड़ ना हो जा, यानी उस पर डांट मारता है। और वो फिर भी जी सर और करबद्ध खड़ा रहता है। ऐसे ही परमात्मा ने जाकर के उस सच्चे उस धर्मराज के दरबार में और वहां पहुंचे तो धर्मराज खड़ा होकर के औपचारिकता करा, काओ प्रभु बैठो विराजमान हो प्रभु। तो परमात्मा उनकी औपचारिकता को ध्यान न देते हुए अपना आदेश सुनाता है, धर्मराय दरबार में गई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तो पकड़िए मत कजाक। गरीबदास जी को दृढ़ करने के लिए कि कहीं ये बालक विचलित ना हो जा, उस धर्मराज के ऊपर ऐसे गांठ लगा रहा है कि मेरे भूले चूके हंस को भी, कबीर हंस को मत पकड़ना कजाक, कहीं तो बदमाशी कर दे। धर्मराज ने कहा प्रभु आपके हंस को नहीं पकड़ूंगा, लेकिन मेरी एक समस्या है परमात्मा, जब से आपकी शरण में नहीं आते उससे पूर्व के जो इनके पाप और पुण्य का लेखा अकाउंट होता है वो तो प्रभु मेरे पास मेरे कागजों में जो का तो विद्यमान रहता है, और बाद का जो आपके पास चले गए वो हमारे कागजों से उसको ओमिट हो जाते हैं, वहां से निकल जाता है। उस पिछले का तो मैंने खाना पूर्ति प्रभु करनी पड़ेगी, उसके आधार पर मैंने इनको सजा भी देनी पड़ेगी। तो परमेश्वर ने कहा कि करम ब्रह्म ब्रह्मांड के ये पलम कर दो ने से, जिन हमारी दो ही दी सो करो हमारे पेशे। ए परमेश्वर तेरे ये करम ब्रह्म इस ब्रह्मांड के इसमें तुमने बना रखे ये नाला को तुमने कर दिया काम को बड़ा सारा, इनको सत्ज्ञान देते नहीं, बचपन से ये सारे उल्टे सुलटे काम करवा डालते हो और फिर कहते हो तुम्हारा ही कर्म तुम्हें ही मिल रहा है, जैसा करोगे हम तो वैसा ही दे देते हैं। कि तुम्हारे ये पिछले जो पाप कर्म है उनको मैं नेश मीन नष्ट कर दूंगा, उनको समाप्त कर दूंगा, उन पापों का विनाश कर दूंगा, और जिन्होंने मेरी मुझे याद किया है कोई भूल चूक कर अनजान पड़े में गफलत के कारण, मान ली एक दो वर्ष पिछली आयु में ना भी भक्ति करे सत्संग भी छोड़ गया, इतना दयालु है परमात्मा, कहते उसको फिर पकड़ भी ले जाओगे ना, और वो फिर वहां याद आएगा इसको ये जो ज्ञान आप सुन रहे ये खाली नहीं रहेगा, आपके अंदर फीड हो रहा है, आपके अंतःकरण में जमा हो गया है। जैसे स्वप्न में कभी कोई बात याद आती है, कभी कोई याद आ जाती है, ऐसे ही ये जब यहां से तुम जाओगे और वहां जाते ही मान ले गफलत मयम के दूध पकड़ भी लेगे तो ये ज्ञान याद आओगा आपके, आपको याद आएगा कोई मुझे तो कहा करते थे हम तो कबीर साहब के सेवक हैं, हम तो काल के दूत हमें नहीं पकड़ सकते, तो उस समय याद आएगा तुझे। और वहां जाकर भी अगर तूने ये कह दिया ना अरे मैं तो कबीर साहब का शिष्य हूं, मेरे गुरु जी वो नाम था वो ऐसे कहते, उनका भी हिसाब मत करिए, उन्हें मेरे पास भेज दिए, मैं आप देखूंगा। एक सेवक बता रहा था कि जी मैं ऐसे स्वप्न में और मेरा शरीर छूट गया और मुझे मैं बाहर निकला तो मुझे अपना वो शरीर भी दिखा और मैं भी दिखू जा रहा। इतने में दो तीन वो आगे मोटे मोटे डिग डोल से ने बोला चार भाई आ तो हमारे साथ आ जा, दो जने आगे और मुझे पकड़ लेंगे। तो मैं कहने लगा भाई कहाँ ले जा रहे हो तुम, वो कहने लगे भाई धर्मराज के पास ले जाएंगे, तेरा टाइम पूरा हो लिया। तो उसको कहने लगे जी मेरे वो बात याद आएगी, अगर भाई हमें तो यम के दूत नहीं ले जा सकते, हम तो कबीर परमात्मा के शिष्य है। तो बोला जी मैंने उन गला मुक्का मुक्का हो गया उड़ा कि तुम हम ले जा ही नहीं सकते, तो दोनों वो वीर मैं भी बोला लो लवान हो गए। एक बोला भाई तू ऑर्डर हो किसने, मैं पहले पता कर हूं यूके झगड़ा है भाई, कहीं सचमुच कोई और ले आए हम। वो एक तो मेरे पास खड़ा रहा, एक अंदर गया, अंदर जाकर बोला जी ऐसे ऐसे कहानी है और वो नौका मैं तुम्हारा, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। कहते धर्मराज ने मेरा ना के कह उसने बोला भाई छोड़ा इसने तो मरवाओ मुझे भी, ये अपना नहीं है। ने बोला जी मैं जब वापस आया तो सारे शरीर में पसीने आ रहे और नो देखू मेरे लो किसी आ रहे कहा खून आया है ना खून आ रहे पर थक रहा ऐसा कसूता जैसे करड़ी कुश्ती कर रखी हो। तो सुबह उठा मैंने घर वालों को बताया कि आज तो मेरी टिकट कट गई थी, आज नहीं था, जब परमात्मा की चरण में नहीं होता तो वहां पे सारी कहानी बताई। एक दो बार मैं पहले भी बता करता घर के का थोड़े नाम ले रहे थे, बोला तेरा तो रोज का ड्रामा है, मेरे पाछे कौन वापस आ सके। अब वो ना माने बोला मैं कैसे भूल जाऊं मेरे गिर वो बीती रात ने। तो यहां परमात्मा कहते हैं धर्मराज दरबार में दे कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस ने तो छेड़िए मत कजाक। जिन कहते हैं ब्रह्म कर्म, धर्मराज ने कहा कि कर्मों से थी रत है इब मुख से कहे, अब तो कहे कबीर, अब तो जपे कब नाम कबीर, और उनको तो मालिक पकड़ूंगा मैं, जड़नी पड़े जंजीर। तो क्या कहते हैं कर्म भ्रम ब्रह्मंड के त्रिपल में कर दो नेश, और जिन हमारी दोही दी सो करो हमारे पेश। बोले पुरुष कबीर ते हाय हाय, बोले पुरुष कबीर से, पुरुष माने प्रभु, प्रभु कबीर से, और वो धर्मराज कर जोड़ और तेरे हंस ने छेड़ू नी मने दो ही लाख करोड़। बोलो सतगुरुदेव की जय। जब धर्मराज ने कहा भगवान आपके हंस ने मैं नहीं छेड़ूंगा, ये दोनों कान पकड़ दे। तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, विश्वास रखना, मैं कोई बालक नहीं और कोई ऐसा अनजान नहीं जो कि खाम का ढिंडोरा पीटता फिरो किसी की स्वार्थवश। मैंने इस परमेश्वर को हजार बार परखा है और हजार से ऊपर ये खरे पाए हैं, तब आपके लिए ये दास एक कुत्ते रूप में उस मालिक ने भेजा है आपको जगाने के लिए। आप विश्वास रखना, दो चार वर्ष में दिखा दूंगा इस सारे अक्षेत्र में। आज तो लोगों के भ्रमित किए हुए अनजान लोग, क्योंकि उनको कोई राहत आज तक मिली नहीं प्रभु की, इसलिए ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, झूठ बोलते हैं, ये उनका कहना भी स्वाभाविक है, उनका दोष कति नहीं। क्योंकि हम सुना करते थे कि भगवान ने ऐसे कर दिया था, एक गांव में ऐसे कर दिया था एक संत ने, लेकिन अब नहीं यकीन रहा था कि सचमुच प्रभु ऐसे गुण देख करता है। और आज हमारे लाखों की संख्या में पुण्यात्माओं को कई कई सुख दे रखे हैं जो भगवान किया करता है, और उनको नहीं हो रहे हैं तो वो सचमुच ये ठीक कह सकते हैं झूठ बोल रहे हैं। और हमने अपने सत्य बताने में शरमाया कर आती है कि इसने कहूंगा ना भाई मेरे घर में ऐसे सुख हो गया तो ये नो कहेगा झूठ बोल रहे, हमने शरमाती है इसका ये जवाब होगा ऐसे नहीं हो सकता। और जब हमारे साथ हो चुका है तब उनकी बातों को नहीं मान सकते कि प्रभु ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए अपने परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखो और कुछ दिन के बाद देखना ऐसी अनौनी करके दर देगा, आप सोच नहीं सकते भगवान ये हुआ तो वह क्यों करे। और देखो इस मार्ग में लगने के बाद मान लीजिए आपको छोटी बहुत कोई आपत्ति आ भी रही है, आप सोच रहे हो कि मेरा ये कार्य नहीं हुआ, आप सोच रहे हो मेरा ये रोग मुक्त नहीं हुए, औरों के हो रहे हैं, इसके भी कई कारण होते हैं। इन सब का दृष्टिकोण रखकर ही आप इस मार्ग पर चल सकते हो। कैसे? या तो आपका कोई नाम खंड हो गया, आप में कोई हीन भावना आ गई है, जिसके कारण परमात्मा ने अपना पंजा पूर्ण नहीं रखा आपके ऊपर। दूसरा यह है कि आपके ऊपर भारी आपत्ति आनी थी, छोड़े में टल रही है, तो आप उसको भी कष्ट मान रहे हो। और तीसरा कारण ये होता है, धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ होवे, माली सीचे सोगड़ा ऋतु आए फल होवे। तीसरा कारण ये है कि धीरे धीरे रे मना। आप विश्वास कर लेना, चार वर्ष दो तीन वर्ष आंख में इसका लग जाओ, चाहे आपको ना भी लाभ होता दिखे। वैसे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको लाभ ना हो, ये तो भूल जाना कि आपको यहां आने के उपरांत कोई लाभ ना मिले। दो कारण आपको बताए हैं, कभी परमात्मा अपनी महिमा आप ही गाते हैं, साहेब के दरबार में ही, साहेब के दरबार में कमी का एक ही ना, हंसा मौज न पावता तेरी चूक चा करी मां। इस परमेश्वर के दरबार में किसी चीज का अभाव नहीं है, इस परमात्मा के दरबार में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, असंभव शब्द नहीं है। अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं हो रहा है, आपकी चूक चाकरी में, आपकी कोई सेवा में, कोई भावना में त्रुटि है, इसको अपनी को सेट कर दे, इसको ठीक कर दे। और दूसरा यह है कि धीरे धीरे रे मना, धीरा सब कुछ हो। जैसे एक आम का पेड़ बीजा जाता है, पौधा लगाया, पानी सींचने लगता है वो मालिक, और फिर धीरे धीरे उसने 100 घड़े डाल देता है, जब जाकर कीटर वो फल देने योग बनता है। और जब वो फल देने योग बन जाएगा, जब देखना उसके ठाठ आम के पौधे के, आप भी खाओगे, पड़ोसी भी तोड़ तोड़ ले जाया करेंगे, और रिश्तेदारों को भी दे कर आया करोगे, फिर भी समाप्त नहीं होंगे। तो ये राम नाम का आम का पेड़ अब आपने बीजा है, इसको सिंचाई करते रहो। ये तरीका इसकी सिंचाई का, सत्संग माना, ज्ञान सुनना, दान करना, भक्ति करना, बुराई त्याग देना, और फिर देखना 2-4 वर्ष के बाद इसके कितने फल लगेंगे। ओए होए, आपको याद भी नहीं आओगे हम कभी दुखी थे, ये सत्कर्म मानना। आप ये अब तो बहन भाई जो नए आते हैं, उनका स्वाभाविक है अपना दुख परमात्मा के सामने विवरण करना, वर्णन करना, और फिर आपके मुख में जबान नहीं रहेगी, लोगे जी नाल होगे, दया कर दी, ओहो अब के गुण गा, यानी ऐसे ऐसे सुख देगा परमात्मा। तो इसलिए कुछ तो समय दे मालिक को देना, और धीरज रखना, इन इन विचारों के आधार पर आप विचलित मत होना, और फिर देखना। या दुनिया उम्र का आग्रह की तुम्हारे सुख देख देख के, अब आते हैं बहन बेटियां जो कति तंग वाली, बहन भाई जो भी हैं, इन माता धोक धोक के सारे जाड़े जुड़े लवा के गुड़गन में वाड़ी बन बोरी सारी धोक के, और फिर वही के वही कष्ट है। अब उनको हम कहते हैं कि ये नियम निभाने होंगे, तो इनको कहे भगवान हम तो छके पड़े हैं, इन तक हम तो कति तंग आ लिया, ईब पर पटक जाएंगे, देखे भी कोई ना, और फिर देखना। ये वो परमात्मा प्रसन्न भी जब होता है, जब हम कति एक तरफ हो जाए, हम दोगले चले कुछ दिन, नाम तो ले लेते हैं भाई, उसने कहा चल मैं दीक्षा ले लेता हूं, और फिर भी डरते दोगले चलते हैं, वहां भी आधी लगाया कि फर्क पड़ा कि दिन रुष्ट ना हो जाए, नहीं या दोगला नहीं चलना होगा आपने, वो एक दिन एक दम ही सब कट ऑफ करना है। दास ने 25 वर्ष हनुमान की साधना की थी, मंगलवार का व्रत रखा करता था, जिस दिन ये सत्ज्ञान मिला उसी दिन त्याग दिया, उद्दापन भी नहीं किया उसका, और दूना लाभ हुआ। ये सत्कर्म मानना, पूरा विश्वास करना, ये पूर्ण परमात्मा है, लेकिन ये मर्यादा से प्रश्न होते हैं। भक्ति वैसे कम हो जाए पर मर्यादा मत तोड़ना, इसकी गाइडलाइन से बाहर मत चला जाना। जैसे रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा था कि लक्ष्मण या तो तू आइए मत मेरे साथ, जब जंगल में वो चित्रकुटी में रहा करते थे वनवास में, और आवे तो ये एक रेखा खींच के आना, ये मंत्र बोल के, और सीता से कह देना कि इसे बाहर मत आना। तो फिर लक्ष्मण को भी जाना पड़ा सीता के कटु वचन सुनकर, तो जाने लगा जब लक्ष्मण ने भी जाना पड़ा, तो सीता से कह के गया था कि माता इस रेखा से बाहर मत आना। अब रावण एक साधु रूप बनाकर भिक्षा लेने गया, तो सीता जी ने कहा था कि साधु इस रेखा से अंदर आके ले जाओ, मैं बाहर नहीं आ सकती। अब रावण आगे को चला, उसमें से लपट निकली, वो एकदम वापस हो गया। उसने कहा कि देना है तुम भिक्षा बाहर आकर दे जा, क्यों साधु के साथ बदतमीजी करते हो। पहले साधुओं से डरिया बहुत करते, आदर बहुत करते थे। अब सीता ने सोचा क्या फर्क पड़े है, एक बार दो सेकंड लगेंगी और देख बाहर अपना बैठ जाऊंगी आके, क्या पता लगे है लक्ष्मण और राम को। और यही बात मारे हमने। अब क्या कहते हैं वो, जरा सा उन्होंने अपनी सोच सोची थी, उस महापुरुष की मर्यादा का भंग कर दिया। वो बाहर आ गई, बाहर आते रावण उठा ले गया। या गरीबदास जी महाराज कहते हैं, मन तू पावगा अपना कियारे, भोगेगा अपना कियारे। राजा राम की कार उलंगी, सीता लंक मजारे। उस वचन का भंग करने से, अपनी चलाने से और बाहर निकल जाने से, मर्यादा से सीता के साथ क्या दुर्गति हुई, 12 वर्ष रावण की कैद काटनी पड़ी। तो इसलिए इस परमात्मा ने जो नियम बना रखे, इससे बाहर मत जाना, उस इसमें काल खा जाएगा, जैसे रावण सीता को उठा लिया। तो ये परमात्मा कहते हैं, जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे ना तुम रवाना, जब तक मेरी आन कान में ये हंस रहेगा तेरा तीर नहीं लग सकता। हम नादानी कर देते हैं, हम लोक लाजम आ जाते हैं, छोटी मोटी बातों को अवॉइड कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, हमने जरा सी लगता, लेकिन परमात्मा का सारा काम बिगड़ जाता है। गरीबदास महाराज कहते हैं कि अनंत कोट ब्रह्मांड जहां हम रचे सकल ब्रह्मांड, और गरीबदास मैं के करो यू काल करे जीव खंडे। अपने कबीर परमात्मा की समर्थता बताते हुए गरीबदास जी कहते हैं कि हमने सारे ब्रह्मांडों की रचना करी है, सबका पालन हम कर रहे हैं, और ये नादान आत्मा हमारे पर विश्वास ना करके हम क्या करें, ये काल के दूत, कोई झाड़ा लाने वाला, कोई झाड़ झाड़ने वाला है, और इनको जुब्बा बुका ले जाए, वहां चले जाते हैं और हमारी फिर मर्यादा से बाहर हो जाते। ऐसे खंड हो जाने से ये काल अटैक कर जाता है, नहीं तो नाम लेने के बाद आपके कांटा भी नहीं लग सकता। तो इसलिए पूर्ण विश्वास रखना, आप और आपके बच्चे सदा सुखी रहेंगे। बोलो सतगुरु देव, पूर्ण विनती करूं धरु चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दिया नाम बख्शीश, कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जामे गुलाम, कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी जाके चोवाजाम, तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं जो देवो सोखा, अब गुण किए तो बहुत किए है करत न मानी हार, बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार, अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाद, जो मैं पूत कपूत हूँ गौर पिता कुमार, मैं अपराधी जन्म का नक्षक भरे विकार, तुम दाता दुख गंजना मेरी करो समर, सुरत करो मम साईया हम है भव जल नाई, आते ही बजावांगे जो तुम न पकड़ोगे मां, अंतर्यामी एक तू आत्म के आधारे, जो तुम छोड़ो हाथ तो हम कौन उतार पारे। बोलो सतगुरु देव की। सभी भक्तात्मा प्रेम पूर्वक बैठ के सत्संग सुने। कबीर सब जग निर्धना धनवंत ना कोए, धनवंत सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। तू कर बंदगी जो चावे दीदारे, अवसर मानुष जन्म का भाई मिलन बारंबारे। मानुष जन्म पाके नहीं रटे हरि नामे, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान सुन के सौ करतारे, गरीब दास मुझ दीन की रखियो बहुत सब।